हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितंतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 10 श्लोक नंबर 2। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, नमे विधु सुरगणा प्रभवम् न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। नमे विदु सुरगणाः प्रभवम् न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। शब्दार्थ, न यानी कभी नहीं, मे यानी मेरे, विदु यानी जानते हैं, सुरगणा यानी देवता, प्रभवम यानी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को, न यानी कभी नहीं, महर्षयः अर्थात बड़े बड़े ऋषि मुनि, अहम यानी मैं हूँ, भगवान कहते हैं अहम आदिर ही देवाना, मैं क्या हूँ, आदि यानी उत्पत्ति ही निश्चय ही देवाना देवताओं का, महर्षिणाम यानी महर्षियों का च भी, सर्वशः सभी तरह से। अनुवाद एवं तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस क्षुद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है? कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जाने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते, यहाँ तक कि उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवादी के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुण द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान प्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के स्वरूप में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं परम भगवान हूँ, मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप भगवान को तभी समझ सकते हैं जब श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनके वचनों को पढ़ें। जो भगवान की अपराशक्ति में हैं, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपने अहितु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति यानी माया से कलमश ग्रस्त होने के कारण निर्विशेष रूप ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहितु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणम। आज भगवान अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं। जैसे कल भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम वापिस सुनो, मेरे परम वचनों को सुनो, क्योंकि तुम बहुत प्रिय लगते हो मुझे। यत् तेहं प्रियमाणाय, मैं तुम्हें अपना प्रिय मानता हूँ, इसलिए वक्ष्यामि हितकाम्यया, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा हित चाहता हूँ। और बताने में सबसे पहली बात बता रहे हैं, न मैं विधु, मुझे नहीं जानते, मैं मतलब न मतलब नहीं, मैं मतलब मुझे विधु, विधु माना मुझे नहीं जानते। कौन? सुरगण, जो देवता है ना वो मुझे नहीं जानते। क्या नहीं जानते? प्रभवम, मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को नहीं जानते हैं। और ना ही न महर्षयः, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना वो भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? उत्तर देते हैं आगे, अहम आदिर ही देवानाम, अहम आदिर, क्योंकि मैं आदि हूँ, मैं उनसे पहले उत्पन्न हुआ हूँ। अब जो आपसे पहले उत्पन्न हो चुका है उसकी उत्पत्ति के विषय में आप कैसे जानोगे कि उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई? नहीं जान सकते ना। उससे भगवान कहते हैं, प्रभवम न महर्षय, जो महर्षि है वो भी मेरे प्रभवम को, उत्पत्ति को नहीं जानते हैं, जो देवता भी नहीं जानते, क्योंकि अहम आदि ही देवानाम, देवताओं का भी आदि मैं हूँ, और महर्षिणाम च सर्वशा, और महर्षियों का भी कारण स्वरूप मैं हूँ। तो यहाँ भगवान ने अपने विषय में इतना कहा कि अब देखो, साधारण मनुष्यों की कैटेगरी से बहुत ऊपर है देवता और मनुष्य। साधारण मनुष्य के पास बुद्धि इतनी थोड़ी होती है, उनका उनके पास आयु इतनी थोड़ी होती है, उनके पास ज्ञान इतना थोड़ा होता है कि वो इस भौतिक जगत को भी नहीं समझ पाते, है ना, भौतिक जगत की बहुत सारी वस्तुओं को नहीं समझ पाते। लेकिन यहाँ भगवान को समझने की बात है, और भगवान कहते हैं इन क्षुद्र मनुष्यों को तो छोड़ो, उनकी क्या बात करूं, मुझे तो बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते, बड़े बड़े महर्षि भी नहीं समझ पाते, मैं किधर से आया हूँ, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मेरा कारण क्या है, ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि अहम आदिर ही देवाना महर्षि राम च सर्वशा, मैं देवताओं का भी आदि हूँ और महर्षियों का भी आदि हूँ। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ठीक है, अगर भगवान को कोई समझ ही नहीं सकता तो समझने की जरूरत क्या है, है ना, समझ ही नहीं सकता है। एक चीज जैसे कोई क्वेश्चन हो, बच्चे को बोले भाई ये क्वेश्चन है वो आप नहीं समझ सकते, आप तो अभी सिक्स क्लास में हो, मैट्रिक क्लास का भी बच्चा नहीं समझ सकता, यूनिवर्सिटी का बच्चा भी नहीं समझ सकता, तो आप क्या कहोगे? फिर नहीं दो, जब वो नहीं समझ सकते तो मुझे तो समझ में आएगा ही नहीं, तो मैं उसको समझाता ही नहीं, मैं उसको समझने का प्रयास ही नहीं करता। लेकिन वास्तविकता क्या है, भगवान बताते हैं कि वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, 15.15 में भगवान कहते हैं, वास्तव में इस भौतिक जगत में यदि कोई जानने योग्य है, अहम एव वेद्यो, जानने योग्य खाली मैं हूँ, अगर मुझे नहीं जाना तो फिर भौतिक जगत में आना ही निष्फल हो गया तुम्हारा। मतलब अगर आप इस भौतिक जगत में कुछ जानने योग्य है तो खाली मैं ही हूँ। इसीलिए वेद कहते हैं अथासो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए क्योंकि तुम मनुष्य बने हो इसलिए तुम उस भगवान को जिज्ञासा करो, उसको जानने का प्रयास करो, क्योंकि जानने योग्य वही है। अब ये एक बात है कि भाई हम भगवान को नहीं समझ सकते, साधारण, भगवान ने ये नहीं लिखा था, अरे ये बात भी कितनी अच्छी है, भगवान ने ये भी नहीं लिखा कि मनुष्य मुझे नहीं समझ सकते, है ना, ये तो भगवान ने कह दिया कि नमे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिरी देवाना महर्षिणाम च सर्वशा, मैं देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने कहा, जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि अनादिर आदि गोविंद, उसका कोई आदि नहीं है, और वो अनादि है और सारे कारणों के कारण है, इसलिए वो परम ईश्वर है, वो आदि है। अब यहाँ भगवान भी कहते हैं अहम आदि ही देवाना, तो फिर उनको कोई ऐसे नहीं समझ सकता कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसको कैसे बने भगवान, ये विषय में नहीं समझ सकता। वास्तव में भगवान कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर कि मुझे इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता, मुझे भौतिक विद्वत्ता के विषय द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवान ने ये नहीं लिखा कि मुझे समझा ही नहीं जा सकता, भगवान ने ये लिखा नमे विदु सुरगणा, जो सुरगण हैं, देवता हैं और महर्षि हैं, वो मुझे नहीं समझ सकते क्योंकि मैं देवताओं और महर्षियों का भी आदि स्वरूप हूँ, तो मेरे उत्पत्ति और ऐश्वर्यों को वो नहीं समझ सकते। लेकिन आगे भगवान कहते हैं, यही बात बताते हैं 11.53 में, भगवान कहते हैं नाहम वेदय न तपसा न दाने न चेष्टया शक्यम एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। नाहम वेदैर न तपसा, ना मैं वेद अध्ययन के द्वारा जाना जा सकता हूँ, ना ही कठिन तपस्या के द्वारा जाना जा सकता हूँ, न दाने ना ही दान देने के से समझा जा सकता हूँ, न चेज्यया, इज्जया मतलब ना ही पूजा करने से जाना जा सकता हूँ, शक्य एवं विदो द्रष्टुम, शक्य मतलब संभव है, एवं इस प्रकार, विदो द्रष्टुम इस प्रकार से मुझे देखना संभव नहीं है, मुझे जाना नहीं जा सकता है, तो कोई भी इन साधनों के द्वारा मुझे नहीं जान सकता। तब मानो अर्जुन कहते हैं कि भगवान एक तो आप कहते हो कि ना मुझे देवता समझ सकते हैं, ना महर्षि समझ सकते हैं, और ऊपर से कहते हो ना वेद अध्ययन करने से मुझे जाना जा सकता है, ना तपस्या करने से, ना दान देने से, ना पूजा करने से मुझे नहीं जाना जा सकता, और ऊपर से कहते हो कि वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, कि सारे वेदों में जानने योग्य खाली मैं ही हूँ, तो तुम खुद ही बता दो कि तुम्हें किस तरह से जाना जा सकता है। तब भगवान कहते हैं 11.54 में, भगवान कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एव विदोजना, हे अर्जुन मैं केवल और केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता हूँ, मुझे जानने का यदि कोई तरीका है तो मैं केवल भक्त, जो भक्त नहीं है, जो भक्ति नहीं करते हैं। अभी पहले भगवान ने कहा श्लोक नंबर 7.25 में, भगवान ने कहा नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम् नाभि जानाति लोको माम अजम अव्ययम्। मैं क्यों नहीं जाना जा सकता हूँ, यहाँ भगवान कहते हैं मैं सुरगणों के द्वारा और महर्षियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्यों नहीं जाना जा सकता, भगवान कहते हैं योग माया समावृता, मैंने अपने ऊपर एक पर्दा डाल रखा है और वो पर्दा है योग माया का। अब भगवान ने अपने ऊपर पर्दा, क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान की मर्जी है वो किसी के सामने प्रकट होना चाहते हैं या नहीं प्रकट होना चाहते हैं, ये भगवान की स्वतंत्रता है। अब भगवान नहीं, भगवान कहते ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ, मेरी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि अब देखो भगवान का नाम है कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है आकर्षित करने वाला। शीला प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का यदि कोई नाम है हो सकता है तो केवल कृष्ण हो सकता है, क्योंकि वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कोई ऐसा जीव हो ही नहीं सकता जो कृष्ण की ओर आकर्षित न हो। जीव चाहकर भी कृष्ण से अपना आकर्षण समाप्त नहीं कर सकता, जीव जी मर के जो भी करके कृष्ण की ओर आकर्षित होगा होगा होगा। तो फिर यहाँ पर यह प्रश्न आता है ना कि हमें तो कृष्ण की ओर कोई आकर्षण नहीं होता, बहुत सारे जीव इस संसार में हैं जिनको कृष्ण की ओर कोई आकर्षण होता ही नहीं है, जो कृष्ण की भक्ति भी नहीं करते, कृष्ण से प्रेम भी नहीं करते, फिर कैसे कहा जा रहा है कि कृष्ण सर्व आकर्षणमय है, सबको आकर्षित करने वाले हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं करते। वास्तव में उन्हें भी कृष्ण ही आकर्षित करते हैं। देखो जो कृष्ण के डायरेक्ट से कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं होते वो कृष्ण के किसी न किसी ऐश्वर्य की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कृष्ण भगवान का क्या मतलब होता है, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशस्या ज्ञान वैराग्य से एव षडनाम भग इति गणा, वह जो संपूर्ण यश संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, संपूर्ण धन, संपूर्ण सुंदरता और संपूर्ण वैराग्य के स्वामी, एकमात्र स्वामी है, वही भगवान हो सकते हैं। अब इस भौतिक जगत में जो डायरेक्ट से कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं, वो भी इनडायरेक्टली भगवान के किसी न किसी ऐश्वर्य की ओर ही आकर्षित हो रहे हैं, है ना। अभी जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते, वो ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते, तो धन क्या है? भगवान का ऐश्वर्य, तो भगवान की ओर ही आकर्षित हो रहे हैं, परंतु भगवान की एक अंश की ओर, है ना। और अगर कोई धन में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो वो क्या, वो बल कमाना चाहता है कि मुझे ज्यादा बलवान होना है, शक्ति की ओर आकर्षित होता है। तो फिर शक्ति क्या है? वो भगवान से भिन्न थोड़ी है, वो भी तो भगवान की ही, भगवान का ही एक ऐश्वर्य है। तो वो भगवान की ओर ही आकर्षित हो रहे हैं, परंतु भगवान के एक अंश की ओर। उसी तरह कोई ज्ञान की ओर, कोई सुंदरता की ओर, कुछ लोग इतना यही लगता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनना है, तो वो भी भगवान की ओर आकर्षित हो रहे हैं, परंतु केवल एक अंश। कोई बोलता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी बनना है, वो बस बोलते हैं क्या सारा दिन भगवान 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 करते रहते हो, पढ़ो लिखो ना, थोड़ा ज्ञान हासिल करो, ये क्या बस खाली माला उठा के महामंत्र जप करते हो। तो भले ही वो भगवान के ओर या भगवान के नाम की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान क्या है? वो भी तो भगवान का ही ऐश्वर्य है, तो भगवान की ओर ही आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भगवान का आकर्षण नहीं है, और क्यों नहीं है? अब जब हमने पहले कहा कि कृष्ण का मतलब है आकर्षित करने वाला, तो सबको आकर्षित, पूर्ण रूप में सबको आकर्षित करना चाहिए ना भगवान को, है ना। अकेले अकेले एक एक ऐश्वर्य को क्यों आकर्षित करते हैं? भगवान भगवान है, कृष्ण है, तो सबको आकर्षित करें। तो जीव के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो भगवान से अपना आकर्षण समाप्त कर सके। लेकिन क्योंकि भगवान से वो, उसने, भगवान ने उस जीव को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है, तो भगवान जो है वो जीव की इच्छा पूरी करते हैं। ये भगवान ने जीव को कहा, ठीक है तुम जो करोगे मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। अब जीव की ये इच्छा होती है कि मैं कृष्ण की ओर नहीं आकर्षित हूं, बल्कि मैं माया से एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं भौतिक वस्तुओं से एंजॉय करना चाहता हूँ। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपनी शक्ति से उसका जो है आकर्षण समाप्त कर देते हैं। कृष्ण की ये कृष्ण ही उस जीव आत्मा की इच्छा के कारण, क्योंकि कृष्ण इतने करुणामयी हैं, कृष्ण के अंदर इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है अपने जीव आत्माओं के प्रति, कि वो चाहते हैं कि जीव आत्मा की हर इच्छा को पूरा किया जाए। और जीव आत्मा क्योंकि इच्छा करती है कि मैं कृष्ण की ओर नहीं बल्कि इंद्र तृप्ति की ओर आकर्षित होना चाहती हूँ, तो भगवान उसे पूरा का पूरा मौका प्रोवाइड करता है कि जाओ तुम अगर चाहते हो कि भगवान मेरी ओर आकर्षित नहीं हो तो तुम एंजॉय करो। लेकिन यहाँ पर यह प्रॉब्लम है कि एंजॉय भी भगवान के ऐश्वर्य को छोड़कर कहाँ से करेगा, है ना। भगवान का ही जो ऐश्वर्य है उनमें से किसी और की तरफ आकर्षित हो जाता है और डायरेक्ट से कृष्ण की भक्ति नहीं करता। तो ये जो भौतिक वस्तुओं का आकर्षण है वो माया का पर्दा है। ये महामाया का पर्दा जीव आत्मा के ऊपर डाल देते हैं भगवान के, ठीक है तुम इस माया में, क्योंकि वो तटस्थ शक्ति है, उस वो तट पर खड़ी नहीं हो सकती, या तो उसे अंतरंगा शक्ति की ओर जाना होगा या बहिरंगा शक्ति यानी माया की ओर जाना होगा। अंतरंगा शक्ति में जाकर उसे भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता इसलिए उसे बहिरंगा शक्ति में भेज दिया जाता है। अब बहिरंगा शक्ति में उसके ऊपर महामाया का पर्दा होता है, इसलिए भगवान कहते हैं नमे विदु सुरगा, इसी क्योंकि उस समस्त जीव आत्माओं के ऊपर महामाया का पर्दा है इसलिए वो मुझे नहीं देख सकते। और दूसरा डबल पर्दा भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मेरे ऊपर योग माया का पर्दा होता है इसलिए वो मुझे नहीं देख सकते। अब दो दो पर्दे, जीव आत्मा के ऊपर महामाया का पर्दा, भगवान के ऊपर योग माया का पर्दा। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं नमे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय, क्योंकि ये सब जीव आत्माएं जो भौतिक जगत में हैं वो सब महामाया के अंदर में है, इसलिए वो मुझे नहीं जान सकती। तो भगवान ने 7.14 में बताया कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, भले ही मेरी माया से को पार करना बहुत कठिन है, परंतु यदि कोई मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं वो उसे सरलता से पार कर जाएगा। तो भगवान को जानने के लिए क्या करना है, भगवान की शरण में जाना है। तो भगवान को जानना बहुत आवश्यक है, हम भगवान को जाने बगैर जो है वो अपने इस जीवन को सफल नहीं कर सकते। भले ही भगवान को जानना कठिन है, लेकिन भगवान को जानना बहुत आवश्यक है। तो फिर करना क्या है, भगवान बताते हैं 10.10 में। भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं, तो क्या करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उपयांतिते, मैं उसे ऐसी बुद्धि देता हूँ, दूसरा बुद्धि योग देता हूँ, ये बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, ये श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण का ऐश्वर्य, श्री कृष्ण का वैभव, श्री कृष्ण का प्रभाव हम इन भौतिक इंद्रियों से नहीं जान सकते। तो प्रश्न उठता है फिर किससे जान सकते हैं, हमारे पास तो भौतिक इंद्रियों के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं ना चीज कोई भी, हमारे पास तो भौतिक बुद्धि है, तो फिर किससे जानेंगे। तब श्री रूप गोस्वामी कहते हैं सेवान मुख है ही जिह्वा दाओ, सेवा करोगे यदि पहले शुरू करोगे जिह्वा से। वास्तव में भक्तों ये जिह्वा जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जिह्वा से हम कृष्ण को समझ सकते हैं। कैसे कर समझ सकते हैं, जब जिह्वा से दो कार्य करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो ये जो भगवान का पवित्र नाम है वो भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। तो ऐसा श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र एई तव स्वभाव जय जपे तारे कृष्ण उपजय भाव, कि ये कृष्ण महामंत्र जो है वो उसका स्वभाव है, ऐसा नेचुरली है, आप चाहे चाहो या ना चाहो जो महामंत्र का जप करेगा उसके अंदर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। तो जिसके अंदर भगवान की भक्ति उत्पन्न हो गई तो भगवान क्या कहते हैं, भक्त्यामा अभिजानंती, तो जो भक्त बन जाएगा वो मुझे समझ सकता है, मतलब जो भगवान का भक्त है वो भगवान को समझ सकता है, लेकिन जो देवता है वो भगवान को नहीं समझ सकते, जो महर्षि हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते। इसका मतलब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो देवताओं से बढ़कर है और जो मेरा भक्त है वो महर्षियों से भी बढ़कर है। तो इसी श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यमेन्द्रिय, कि भगवान के नाम को, गुण को, लीलाओं को, भगवान के अस्तित्व को हम इन इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। सेवान मुखे ही जिह्वा दो, जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, जब हम भगवान को प्रसाद अर्पण करेंगे, जब भगवान की सेवा करेंगे इंद्रियों के द्वारा, तो क्या होगा, स्वयं एव सुफूर्त्यदा, वो स्वयं आएंगे हमारे सामने, प्रकट होंगे और हमें स्वयं बताएंगे कि क्या हूं मैं। ऐसे भगवान कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपे, तो मैं उसे ऐसी बुद्धि दूंगा, मैं स्वयं दूंगा, मैं स्वयं प्रबंध करूंगा उसका कि वो कैसे मुझे समझ सकते, बाकी वो अपनी इच्छा से मुझे नहीं समझ सकते। वो तो क्या बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं समझ सकते, जैसे हम जानते हैं कृष्ण लीला में भगवान को बहुत सारे देवताओं ने परखना चाहा, है ना, जैसे ब्रह्मा व मोहित लीला में ब्रह्मा जी आए भगवान को परखने के लिए कि ये भगवान कैसे हो सकता है, भगवान के कार्यकलाप इतने विमोहित करने वाले होते हैं कि देवता भी उसे नहीं समझ सकते हैं कि कैसे भगवान हो सकता है, और जो इंद्र है वो भी भगवान को समझ नहीं सका कि ये भगवान, इंद्र बड़े से बड़े देवताओं में देवेंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं, और ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि के ये सृजन करता है, वो भी भगवान को नहीं समझ सके, तो फिर साधारण जीव की क्या बात करनी। इसीलिए कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में बहुत ही सुंदर बात बताते हैं, वे कहती हैं माया जवनी का छन्नम अज्ञा दुक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृश्या नटो नाट्य धरो यथा। माया जवनी का चलनम, कि आप तो एक माया के पर्दे में अपने आप को छिपा देते हो। अज्ञादोक्ष जब अव्ययम, इसलिए सीमित इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जा सकते। न लक्ष्य से मूढ़ दृश्य, जो मूढ़ हैं, जो अज्ञानी हैं, वो तो आपको कभी भी नहीं समझ सकते। वो आप उनको कभी भी दिखते ही नहीं हो, समझ में आते नहीं हो। नटो नाट्य धरो यथा, नटो नाट्य धरो यथा मतलब जिस प्रकार नाटक में कोई व्यक्ति यदि वेश बदल कर कोई वेश धारण करता है तो असली व्यक्ति कौन है तो उसको नहीं पहचान सकते ना, तो उसी तरह भगवान भी इस भौतिक जगत में आकर ऐसी लीलाएं करते हैं कि उनको कोई समझ नहीं पाता कि ये कैसे हो सकता है कि भगवान है। क्योंकि देवताओं और ऋषियों के पास ज्ञान बहुत है, वो जानते हैं कि भगवान की महिमा बहुत बड़ी है, वो भगवान जो है वो साधारण नहीं है। लेकिन जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं और कार्य इतने साधारण करते हैं तो फिर वो उलझ जाते हैं कि ये भगवान। जैसे अब भगवान श्री कृष्ण जब वामन अवतार धारण किया तो छोटे से वामन भगवान के रूप में आए और महाराज बलि से तीन पग पृथ्वी नाप के ले लिए और तीन पग पृथ्वी में उन्होंने तीनों लोक तक नाप लिए। उन्होंने सब कुछ जो भी महाराज बलि के पास था वो सब सिर्फ दो पग धरती में नाप लिया, दो पग में नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं थी। अभी वो जानते हैं, देवता और जो ऋषिगण है वो जानते हैं भगवान की महिमा इतनी बड़ी। और यही कृष्ण जब छोटे से शिशु बनकर आते हैं यशोदा के घर पे, तो नंद बाबा की ड्योरी को लांगना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, वो लांग नहीं सकते हैं छोटी से ऐसे, क्योंकि नंद बाबा का जो घर है उसमें बहुत सारे कमरे हैं। फिर यहाँ पर एक ड्योरी पर एक स्टेप बना हुआ है और स्टेप से जब कृष्ण गुजरना होता है ना तो कृष्ण को बहुत मुश्किल लगता है। पहले बैठते हैं, पहले छोटे छोटे कदमों से चलते चलते जब ड्योरी आती है तो बैठ जाते हैं और बैठ के फिर एक टांग को नीचे रखते हैं और फिर डर भी लग रहा होता है उनको कि कहीं मैं गिर न जाऊं, दोनों हाथों से फर्श को ऐसे टाइट पकड़ते हैं, फिर दूसरी टांग को नीचे ऐसे उतारते हैं, छोटा सा पांव नीचे रखते हैं और फिर कहीं जाकर उसको लांग सकते हैं। अभी ये जब देवी देवता देखेंगे और महर्षिगण देखेंगे उनको लगेगा ये कैसे भगवान हो सकता है, भगवान तो वो है जो दो पग में पूरी त्रिलोकी को नाप सकता है और इसके सामने तो ये ड्योरी जो है वो लांगना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम हो गया। ये भगवान जो नरसिंह बनकर बड़े बड़े से बड़े राक्षस हिरण्यकश्यपु का वध केवल नाखून से चीर कर देते हैं, वही यशोदा मैया के घर पे जब बिल्ली बोलती है म्याऊं तो फिर यशोदा मैया की गोद में जाके छुप जाते हैं, मैया मैया। और ये भगवान कैसे हो सकते हैं? इसे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहित की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। यानी कि फिर भगवान क्या करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि भगवान के इस भौतिक जगत में कोई भी मुझे समझ नहीं पाता है, इसलिए वो स्वयं अवतार लेते हैं। और यहाँ पर देखो मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है कि पशु जो होता है वो सिर्फ अनुमान प्रमाण या प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही यकीन कर सकता है। प्रत्यक्ष मतलब जो उसके सामने हो उसी पर यकीन कर सकता है और जो अनुमान वो लगा सकता है उसी पर वो है ना यकीन कर सकता है। लेकिन मनुष्य के लिए भगवान ने शास्त्र बनाए हैं, यानी ये जो शास्त्र प्रमाण है, जो शब्द प्रमाण है, वो मनुष्य के लिए है। तो इस शब्द प्रमाण से हम भगवान को समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के लिए श्री भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में आते हैं, वो डायरेक्ट से भगवान को देखकर कोई नहीं समझ सकता। जैसे भगवान तो दुर्योधन के सामने भी आए थे, दुर्योधन के सामने न केवल भगवान आए थे बल्कि दुर्योधन को अपना विश्व रूप भी दिखाया था, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्योधन भगवान को नहीं समझ सके और कहा पकड़ लो इस ग्वाले को और बंदी बना दो। भगवान सामने साक्षात खड़े हैं लेकिन भगवान को इन भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। कंस भगवान को नहीं समझ सका, हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं समझ सका। रावण के सामने भगवान श्री राम आ गए और कहने लगे, रावण तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तो वो कहने लगे, ये सन्यासी, ये भिखारी, ये भगवान हो सकता है? तो भगवान को हम नेत्रों से नहीं समझ सकते, भगवान को समझने का तरीका है शब्द प्रमाण। इसे श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ पर हूँ, मैं परम भगवान हूँ, मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यानी कि भगवान को यदि समझा जा सकता है तो केवल शास्त्र प्रमाण से समझा जा सकता है, शास्त्र में। और शास्त्र भी कैसे समझे जा सकते हैं? जब हम किसी प्रामाणिक आचार्य से उसको श्रवण करते हैं। भगवान नेत्रों से नहीं, करणों से श्रवण करके समझने की वस्तु है। जब हम भगवान को भगवान के विषय में श्रवण करते हैं किसी शुद्ध भक्त के द्वारा, तो ही हम भगवान को समझ सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी पहली बार वृंदावन गए थे। वृंदावन जब वो पहली बार गए तो सब लोग जैसे यात्रा कर रहे होते हैं, सब लोग सारी जगहों को देखने जाना था ना उनको, राधा कुंड, श्याम कुंड। तो अभी उस दिन उनके साथ है ना भक्तिस्थान सरस्वती महाराज, जो उनके गुरु महाराज हैं वो भी थे। लेकिन आज उनके गुरु महाराज ने कहा कि मैं आज यात्रा पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आज यहीं पर बैठूंगा, प्रवचन करूंगा। तो अनाउंसमेंट करा दिया गया कि जिसको प्रवचन सुनना है वो यहीं पर शिविर में बैठेगा और जिसको दर्शन करने हैं वो जा सकता है। तो बहुत सारे जो भक्त थे वो दर्शन करने चले गए, लेकिन ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उस समय दर्शन करने के लिए नहीं गए बल्कि वहीं पर बैठे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने बोला, अभय तुमने पहले भी वृंदावन आए हो तुम या फर्स्ट टाइम आए हो? तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, गुरु महाराज मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ। तो बोला, फिर तुम दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे हो, दर्शन करने जाओ। तो बोला, गुरु महाराज यदि मैं दर्शन करूंगा तो मैं उन स्थानों की महिमा को नहीं समझ सकूंगा। दर्शन तो उनके सारे लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, परंतु मैं उनकी महानता को, उन स्थलों की दिव्यता को तभी समझ सकता हूँ जब मैं आपके द्वारा श्रवण करूंगा। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि भगवान और भगवान की लीला स्थलों को समझने के लिए नेत्रों की नहीं, कर्णों से श्रवण करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपके द्वारा श्रवण करना चाहता हूँ। फिर तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने कहा, अबे तुमने बिल्कुल सही कहा कि भगवान को और भगवान के जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान के जो धाम हैं, उनकी महिमा को केवल श्रवण करके ही समझ सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी के इसी श्रवण के भाव को देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने उन्हें हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ दी। मतलब उन्होंने देखा कि श्रवण के प्रति इनका इतना भाव है, तो उनको हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ दी कि जिसका श्रवण के अंदर जिसकी रुचि होती है ना, वो अवश्य भगवान को समझ सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। भागवतम तो यहाँ तक कहता है, सद्यो रिद्य वरुद्य ते कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, कि ना केवल भगवान को समझा जा सकता है भागवतम को श्रवण करने से या शास्त्र को, ना केवल समझा जा सकता है, केवल शास्त्र को, भागवत को किसी शुद्ध भक्त के द्वारा श्रवण करने की इच्छा भी यदि कोई करता है तो भगवान आपके हृदय में बंदी बनकर आ जाते हैं, कैद हो जाते हैं आपके हृदय में। तो भगवान को केवल श्रवण करके ही, प्रेम से यदि हम भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण करते हैं तो उसको समझ सकते हैं, अन्यथा चाहे देवता हो या ऋषि हो चाहे कोई भी हो, भगवान को नहीं समझ सकता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहिएगा ताकि हम भी भगवान को समझ सकें और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। हरे कृष्ण।